पृष्ठ संख्या 217, प्रशासकीय यंत्र एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म। उपर्युक्त लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए केंद्रीय, राज्य, जिला एवं ब्लॉक स्तरों पर व्यापक प्रशासकीय संगठन की स्थापना की गई है, जिसका विवरण निम्न है। केंद्रीय स्तर पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय एट द सेंटर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय नागरिकों को स्वास्थ्य एवं सुखी जीवन व्यतीत करने योग्य बनाने हेतु राष्ट्रीय प्रयासों में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। संविधान के अंतर्गत जन स्वास्थ्य एवं सफाई, अस्पताल एवं औषधालय राज्य सूची में हैं। जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार कल्याण, चिकित्सीय शिक्षा, खाद्य पदार्थों एवं अन्य वस्तुओं में मिलावट, औषध एवं विष, चिकित्सीय व्यवसाय, जन्म एवं मृत्यु संबंधी आंकड़े, पागलपन एवं मानसिकता अपूर्णता समवर्ती सूची में हैं। मंत्रालय राष्ट्रीय महत्व के अनेक कार्यक्रमों यथा परिवार कल्याण, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं, मनोरोग अवरोधन एवं नियंत्रण आदि के क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी हैं। इसकी अनेक केंद्रीय प्रायोजित परियोजनाएं हैं जो राज्यों के माध्यम से क्रियान्वित होती हैं। इसके साथ ही इसकी अनेक केंद्रीय स्तर की स्कीमें भी हैं। इन सभी स्कीमों का उद्देश्य सन 2000 तक सबके लिए स्वास्थ्य के लक्ष्य को प्राप्त करना है। संगठन ऑर्गेनाइजेशंस। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय कैबिनेट मंत्री के अधीन है। इसके सहायतार्थ राज्य मंत्री, उप मंत्री की नियुक्ति की जाती है एवं जो संसद के प्रति उत्तरदायी है। मंत्रालय का कार्यकारी अध्यक्ष सचिव पद का व्यक्ति होता है। इस मंत्रालय के दो विभाग हैं, स्वास्थ्य विभाग एवं परिवार कल्याण विभाग। 3 अधीनस्थ कार्यालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण निदेशक बम्बई, होम्योपैथिक औषध विज्ञान का प्रभारी अधिकारी गाजियाबाद तथा भारतीय औषध विज्ञान प्रयोगशाला निदेशक गाजियाबाद इसके अधीन कार्य करते हैं। मंत्रालय 29 स्वायत्त अथवा विधिक निकायों से प्रशासन के स्तर पर संबद्ध है। कुछ सार्वजनिक उपक्रम भी इस मंत्रालय के प्रशासकीय नियंत्रणाधीन हैं। स्वास्थ्य विभाग चिकित्सीय एवं जन स्वास्थ्य संबंधी मामलों की देखभाल करता है, जिसमें औषध नियंत्रण एवं खाद्य पदार्थों की मिलावट भी सम्मिलित है। इसका अध्यक्ष एक सचिव होता है, जिसकी सहायता के लिए एक अतिरिक्त सचिव होता है। यह विभाग स्वास्थ्य सेवा निदेशक के माध्यम से कार्य करता है। महानिदेशक चिकित्सीय एवं जन स्वास्थ्य संबंधी मामलों एवं स्वास्थ्य स्कीमों के क्रियान्वयन एवं प्रबोधन से तकनीकी परामर्श प्रदान करता है। सचिव के अतिरिक्त जो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का संपूर्ण अध्यक्ष है, परिवार कल्याण मंत्रालय में एक विशेष सचिव होता है जो राज्यों में स्वास्थ्य संबंधी प्रोग्रामों के क्रियान्वयन का पर्यवेक्षण करता है तथा तकनीकी प्रमाणों एवं सचिवालय के कार्यों एवं क्रियाकलापों में समन्वय उत्पन्न करता है। तकनीकी पक्ष में जो प्रमाण हैं, रोमन का नंबर 1 प्रोग्राम मूल्यांकन एवं विशेष स्कीम, रोमन का नंबर 2 तकनीक सेवाएं, रोमन का नंबर 3 मातृ एवं बाल कल्याण, रोमन का नंबर 4 मूल्यांकन एवं आंकड़ा, रोमन का नंबर 5 जन शिक्षा एवं प्रचार, रोमन का नंबर 6 निरोध विपणन आपूर्ति अथवा विभाजन, रोमन का नंबर 7 यातायात, रोमन का नंबर 8 सार्वभौमिक रोग निरोधन प्रोग्राम एवं रोमन का नंबर 9 क्षेत्रीय परियोजनाएं। पृष्ठ संख्या 218, ये तकनीकी प्रमाण तकनीकी प्रोग्रामों के सभी घटकों की देखभाल करते हैं, उदाहरणतया नसबंदी, IUD निरोध, मातृ एवं बाल कल्याण स्कीमें, सार्वभौमिक रोग निरोधक प्रोग्राम आदि। मूल्यांकन एवं आंकड़ा, विभाग भावी योजना तैयार करने तथा प्रोग्रामों के क्रियान्वयन का मूल्यांकन एवं प्रबोधन करने में सहायता करता है। यह जनसांख्यिकी अनुसंधान को भी समन्वित करता है। केंद्रीय स्तर पर जन प्रचार प्रभाग का अध्यक्ष अतिरिक्त सचिव के पद का एक अधिकारी एडवाइजर के नाम से होता है, जिसका कार्य परिवार कल्याण प्रोग्राम की प्रचार एवं संचार समर नीतियों को नई दिशा देना है। एडवाइजर की सहायता के लिए डायरेक्टर मीडिया एवं मीडिया अधिकारियों एवं प्रोग्राम अधिकारियों की टीम होती है। मीडिया प्रमाण का कार्य जन शिक्षा द्वारा शैक्षिक प्रचार एवं प्रसार तथा प्रोग्राम को विस्तार और समर्थन प्रदान करना है। यह जनसंख्या संबंधी शिक्षा गतिविधियों की भी देखभाल करता है। सचिवालय स्तर पर नीति प्रमाण, सहायक प्रोग्राम प्रमाण, संगठित सेक्टर, सहकारी सेक्टर, स्वयंसेवी समुदाय एवं योजना बजट प्रमाण हैं। वित्तीय परिव्यय, फाइनेंशियल आउटलेस, सातवीं योजना के स्वास्थ्य के लिए 3,392.89 करोड़ रुपए का परिव्यय निर्धारित किया गया, जिसमें से 2,495.55 करोड़ रुपए राज्यों तथा संघ प्रदेशों, रुपया 557.75 करोड़ केंद्रीय प्रायोजित प्रोग्रामों तथा 339.59 करोड़ रुपए केंद्रीय स्कीमों के लिए रखे गए। वर्ष 1988-89 के लिए 13,009 लाख रुपए केंद्रीय प्रायोजित एवं केंद्रीय स्कीमों, 9,621 लाख रुपए राज्यों एवं संघ प्रदेशों के योजनागत प्रोग्रामों तथा 31,572.17 लाख रुपए गैर योजनागत प्रोग्रामों के लिए आवंटित किए गए। इस प्रकार 54,202 लाख रुपयों के कुल परिव्यय का प्रावधान किया गया। पृष्ठ संख्या 219, स्वयंसेवी सेक्टर को वित्तीय सहायता, फाइनेंशियल असिस्टेंस टू वॉलेंटियरी सेक्टर। भारत सरकार ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रोग्रामों में सामुदायिक सहभागिता एवं न संबद्धता के महत्व को स्वीकार करते हुए स्वयंसेवी संगठनों को वित्तीय सहायता, परामर्श एवं विभिन्न राष्ट्रीय प्रोग्रामों में सहभागिता हेतु प्रोत्साहन देकर बढ़ावा दिया है। यह वर्तमान एवं अस्पताल के विस्तार एवं नए अस्पतालों की स्थापना के लिए सहायता देती है। ऐसी सहायता रोमन का नंबर 1 ग्रामीण क्षेत्रों अथवा घनी आबादी वाले नगरीय गंदी बस्तियों में कार्यरत स्वयंसेवी संगठनों को अस्पतालों के विस्तार, उन्नयन हेतु चिकित्सीय सेवाओं को बेहतर बनाने हेतु स्कीम। रोमन का नंबर 2 स्वैच्छिक रक्तदान प्रोग्रामों के विकास एवं उन्नयन हेतु स्कीम। रोमन का नंबर 3 ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे अस्पताल स्थापित करने के बारे में ग्रामीण क्षेत्रों हेतु विशेष सुविधा स्कीमों के अंतर्गत दी जाती है। वित्तीय वर्ष 1987-88 में 32 लाख रुपए की सहायता उपर्युक्त रोमन का नंबर 1 एवं रोमन का नंबर 2 स्कीमों के लिए 24 संस्थानों को तथा स्कीम रोमन का नंबर 3 के लिए 8 संस्थाओं को 24.46 लाख रुपए की सहायता अनुदान दिए गए। राज्य स्तर पर प्रशासकीय संरचना, एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप एट द स्टेट लेवल। राज्य के मंत्रिमंडलीय मंत्री राज्य मंत्री के पास स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग होता है। उसके सहायतार्थ राज्य मंत्री उप मंत्री की नियुक्ति हो सकती है। यह विभाग के कार्य के लिए विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होता है। भारतीय प्रशासनिक सेवा का वरिष्ठ अधिकारी जिसे सचिव कहा जाता है, सचिवालय स्तर पर विभाग का अध्यक्ष होता है, जो मंत्री को नीति निर्माण संबंधी मामलों में परामर्श देता है एवं निदेशालय एवं क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा उनके क्रियान्वयन की देखभाल करता है। कुछ राज्यों में निदेशालय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा मेडिकल शिक्षा एवं अनुसंधान में विभाजित होता है। निदेशक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोग्रामों के क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी होता है। वह राज्य के जन्म एवं मृत्यु आंकड़े का पदेन मुख्य रजिस्ट्रार भी है। अपने विधिक कर्तव्यों के परिपालन में उसकी सहायता के लिए संयुक्त निदेशक, उपनिदेशक, सहायक निदेशक, राज्य नियंत्रक, राज्य परिवार कल्याण अधिकारी, आंचलिक कुष्ठ अधिकारी, मुख्य लेखा अधिकारी, परिवहन अधिकारी एवं जन प्रचार एवं शिक्षा अधिकारी होते हैं। यह अधिकारी विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोग्रामों तथा परिवार कल्याण, मातृ एवं बाल स्वास्थ्य, रोग निरोधन प्रोग्रामों, स्वास्थ्य शिक्षा, औषध एवं खाद्य पदार्थों की मिलावट, मलेरिया, तपेदिक, जन्म मृत्यु सांख्यिकी, जन्मों एवं मृत्युओं का पंजीकरण, जनसांख्यिकी, कोढ़ रक्तदान आदि की देखभाल करते हैं। निदेशक स्वास्थ्य सेवा राज्य में अस्पतालों एवं औषधालयों का भी प्रभारी अधिकारी होता है। निदेशक मेडिकल शिक्षा एवं अनुसंधान, मेडिकल कॉलेजों एवं अनुसंधान की देखरेख करता है। पृष्ठ संख्या 220। जिला स्तर पर सिविल सर्जन अथवा मुख्य चिकित्सा अधिकारी स्वास्थ्य विभाग का प्रशासकीय अध्यक्ष होता है। वह जन्म एवं मृत्यु का पदेन जिला रजिस्ट्रार होता है। उसकी सहायता सिविल सर्जन, जिला स्वास्थ्य अधिकारी, जिला परिवार कल्याण अधिकारी एवं जिला रोग निरोधक अधिकारी द्वारा होता है। ब्लॉक स्तर पर विभाग का प्रशासकीय नियंत्रण प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के हाथों में होता है एवं खंड स्तर पर विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोग्रामों के क्रियान्वयन की देखभाल करता है। वह समुदाय को उचित निदानात्मक सेवाओं को भी सुनिश्चित करता है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति क्रियान्वयन, नेशनल हेल्थ पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति स्वास्थ्य देखभाल के अवरोधक, सुधारात्मक एवं पुनर्वासीय पक्षों पर बल देती है। दूरस्थ एवं बिखरे हुए ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के घरों तक तथा व्यापक एवं समेकित प्राथमिक बाल स्वास्थ्य सेवाओं एवं परिवार कल्याण सेवाओं को ले जाने की आवश्यकता का अनुभव करते हुए समेकित स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली, अधिकतम सामुदायिक सहभागिता सहित का विकास किया गया है। इस सभी प्रोग्राम के प्रशासन एवं क्रियान्वयन को देश में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाओं की समेकित संरचना के माध्यम से संगठित किया जाता है। इस शताब्दी के अंत तक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण क्षेत्र में प्राप्त करने के लिए जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है वह है सबके लिए स्वास्थ्य एवं जनसंख्या स्थिरीकरण। इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं एवं राष्ट्रीय प्रोग्रामों में वृद्धि की गई है। प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा लोगों को उनके घरों के निकटस्थ एवं उनकी पहुंच के अंदर लागत पर उपलब्ध कराई जाती है। 5,000 की जनसंख्या के लिए एक उपकेंद्र होता है, परंतु पहाड़ी, जनतंत्री एवं पिछड़े क्षेत्रों में प्रत्येक 3,000 जनसंख्या के लिए एक उपकेंद्र होता है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र 30,000 की जनसंख्या को कवर करता है, परंतु पहाड़ी जनजाति एवं पिछड़े क्षेत्रों में वह प्रत्येक 20,000 की जनसंख्या के लिए स्थापित किया जाता है। जन स्वास्थ्य केंद्र का सबसे महत्वपूर्ण घटक मातृ एवं बाल स्वास्थ्य देखभाल सेवा है। सामुदायिक विकास केंद्र जो लगभग 1,00,000 की जनसंख्या के लिए होता है, ग्रामीण लोगों को विशेषज्ञों की सेवा उपलब्ध कराता है एवं इसके एक्सरे, प्रयोगशाला परीक्षा एवं अस्पताली आवास की सुविधाएं होती है। इस समय 112-103 उपकेंद्र, 16,954 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, 1,469 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देश में कार्य कर रहे हैं। उपकेंद्रों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की यह श्रृंखला ग्रामीण क्षेत्रों जिसमें पहाड़ी जनजाति एवं पिछड़े क्षेत्र सम्मिलित हैं में अवरोधनात्मक, निदानीय एवं सुधारात्मक सेवाओं पैकेज प्रदान करती है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोग्रामों ने स्वतंत्रता प्राप्ति से पर्याप्त प्रगति की है। आज जन्म के समय जीवन प्रत्याशा 58 वर्ष है, जबकि 1947 में यह 32 वर्ष थी। मृत्यु दर 27 की तुलना में घटकर 10.8 हो गई है। चेचक का उन्मूलन कर दिया गया है। मलेरिया के कारण मृत्यु कम हो गई है। तपेदिक 1 की रोकथाम के क्षेत्र में पर्याप्त विस्तार हुआ है। विशेषतया ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के माध्यम से गंभीर रूप से रोगग्रस्त तपेदिक एवं के रोगियों के लिए लगभग 46,000 बिस्तर हैं। पृष्ठ संख्या 221। राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण प्रोग्राम का उद्देश्य सन 2000 तक दृष्टिहीनता को 1.4% से घटाकर 0.3% तक लाना है। इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु कैंपों का आयोजन किया जाता है एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों एवं अस्पतालों में दृष्टि सुरक्षा सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। इस देश में लगभग 90,00,000 व्यक्ति दृष्टिहीन हैं तथा 45 मिलियन लोगों को दृष्टि हानि का रोग है। दृष्टिहीनता को कंट्रोल करने हेतु कुछ आवश्यक उपाय जो इस देश के लिए किए गए हैं इस प्रकार हैं। जिला चल यूनिटों की स्थापना, नेत्र बैंकों का सशक्त बनाना, नेत्र कैंपों के संचालन, नेत्र रोग सहायकों के प्रशिक्षण एवं स्वास्थ्य शिक्षा प्रसार के लिए मार्ग निर्देशों की व्यवस्था करना। कुष्ठ सामाजिक एवं चिकित्सीय दोनों प्रकार की समस्या है। अनुमान है कि लगभग 40,00,000 व्यक्ति कुष्ठ रोग से पीड़ित हैं, जिनमें प्रत्येक पांचवा एक बच्चा है। शहरी एवं ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में कुष्ठ रोग इकाइयों का व्यापक जाल तंत्र है। 75 जिलों में जहां यह अधिक फैला हुआ है में प्रभावी बहु औषध निदान उपलब्ध है। यह निदान 40 अन्य जिलों में विस्तारित किया जा रहा है। प्रथम बार इस रोग की घटना दर में कमी दिखाई दी, क्योंकि ठीक हुए रोगियों की संख्या 5.19 लाख 1987-88 में पाए गए नए रोगियों की संख्या 5.7 लाख से अधिक है। एड्स, इसकी प्रथम सूचना अमेरिका ने 1981 में दी, जो अब अन्य देशों में फैल रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 1991 तक एड्स के कीटाणु 5 से 10 लाख लोगों को प्रभावित कर देंगे। भारत में 1985 में इस रोग का पता लगाने का कार्यक्रम आरंभ किया गया। आज उच्च खतरे वाले समूहों में लोगों की जांच करने के लिए 40 निरीक्षण केंद्र कार्य कर रहे हैं। 1988 तक 1,83,000 से अधिक व्यक्तियों की जांच की जा चुकी है, जिनमें 658 व्यक्तियों को इस रोग से प्रभावित पाया गया है। इनमें से 27 व्यक्तियों की जांच की जा चुकी है, जिनमें 658 व्यक्तियों को इस रोग से प्रभावित पाया गया है। इनमें से 27 व्यक्ति गंभीर रोग से रोगग्रस्त थे। इनमें 18 भारतीय थे। निरीक्षण की सुविधा सभी मेडिकल कॉलेजों में विस्तारित की जा रही है, जहां एड्स के निदान हेतु सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएगी। रक्त परीक्षण के अतिरिक्त स्कूलों एवं महाविद्यालयों में एड्स के बारे में जो सामान्य जानकारी देने के लिए शिक्षा का कार्यक्रम भी आरंभ किया गया। राष्ट्रीय गलगंडु नियंत्रण प्रोग्राम द नेशनल गोइट्री कंट्रोल प्रोग्राम, इसके अधीन 1992 तक संपूर्ण देश में खाद्य नमक के स्थान पर आयोडीन युक्त नमक की आपूर्ति करने का लक्ष्य है। 1989-90 में आयोडीन युक्त नमक का उत्पादन 22 लाख मीटर टन होने की प्रत्याशा थी। लगभग 40 मिलियन लोग स्थानिक मारी सब हिमालय क्षेत्र में आयोडीन की कमी से पीड़ित हैं। अब यह विवादित है कि आयोडीन की कमी के कारण न केवल गलगंडू का रोग उत्पन्न है, अपितु इनसे मानसिक तौर पर मंद अथवा अन्य प्रकार के दुर्लभ अथवा कम वजन वाले बच्चों, यदि माता पिता इसकी कमी से ग्रस्त हैं, का बच्चा भी होता है। पृष्ठ संख्या 222। राष्ट्रीय मधुमेह नियंत्रण प्रोग्राम नेशनल डायबिटीज कंट्रोल प्रोग्राम, इसका आरंभ 1987-88 में प्राथमिक देखभाल पैकेज के अंग रूप में मधुमेह स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए मार्गदर्शी आधार पर किया गया। इस वर्ष मौखिक स्वास्थ्य विज्ञान के प्रोग्राम को आरंभ किया गया। 7वीं योजना में आरंभ में एक अन्य प्रोग्राम है, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य प्रोग्राम, जो लोगों को क्रमिक अवस्था में न्यूनतम मानसिक स्वास्थ्य देखभाल उपलब्ध कराने को सुनिश्चित करता है। राष्ट्रीय रोग निरोधक प्रौद्योगिकी मिशन नेशनल टेक्नोलॉजी मिशन ऑन इम्यूनाइजेशन, इसकी स्थापना बच्चों में मृत्यु दर एवं रुग्णता दर को कम करने के लिए टीका द्रव्य उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने हेतु की गई है। सार्वभौमिक रोग निरोधन प्रोग्राम बाल जीविता दर को बढ़ाने हेतु 307 जिलों में पूर्व से ही चल रहा है, जहां 1990 तक सभी जिलों में यह आरंभ कर दिया जाएगा। इस प्रोग्राम के अधीन एक वर्ष में कम आयु के सभी बच्चों को DPT, पोलियो, खसरा एवं BCG के टीके लगाकर रोग निरोधक बना देना है। सभी गर्भवती माताओं को टेटनेस टॉक्साइड के 2 टीके लगाकर बच्चों को जन्मजात टेटनेस से सुरक्षा करना है। एक अन्य प्रोग्राम जो बच्चों के जीवन से संबंधित है, मौखिक पुनः जलपूर्ति चिकित्सा प्रणाली है, जिससे बच्चों को अतिसार के कारण जलविहीनता से उपजित मृत्यु से रक्षा की जाती है। लगभग 5 वर्ष से कम आयु के 10 करोड़ बच्चे वर्ष में 3 बार अतिसार से पीड़ित होते हैं। इनमें से 30 लाख की मृत्यु हो सकती है। इनमें से लगभग 50% बच्चों को मौखिक जल आपूर्ति द्वारा बचाया जाता है, जिसका अर्थ है बच्चों को घर पर ही सरल तरल पदार्थ देना। परंतु प्रयोग किए जाने वाले ORS पैकेट भी स्वास्थ्य सेवा केंद्रों के माध्यम से निःशुल्क वितरित किए जाते हैं। इस बात की विश्वव्यापी जागरूकता है कि माँ और बच्चा दोनों स्वास्थ्य के मामले में सबसे छोटा समूह है। शिशु जन्म के समय तथा गर्भ संबंधी कारणों से महिलाओं की मृत्यु की संख्या विकासशील देशों भारत सहित में सबसे ऊंची है। पोषण अभाव के कारण रक्त क्षीणता को प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम के अंतर्गत आयरन एवं फोलिक एसिड की गोलियों एवं मिश्रण निःशुल्क देकर दूर किया जा रहा है। 1 से 5 वर्ष की आयु के बच्चों को विटामिन ए के अभाव से उत्पन्न दृष्टिहीनता की रोकथाम के लिए विटामिन ए की खुराक दी जा रही है। महिलाओं को बार बार छोटी आयु अथवा अधिक बाद की आयु में बार बार गर्भ होने के कारण हानि उठानी पड़ती है। पूर्व जन्म एवं जन्मोत्तर सेवाओं द्वारा जो उपकेंद्रों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में उपलब्ध है, इसको कम किया जा रहा है। सुरक्षित जन्म दिलवाने हेतु अनेक दाइयों को प्रशिक्षित किया गया है। छोटे परिवार के पक्ष में मूल्य परिवर्तन लाने हेतु हमारे देश की सामाजिक सांस्कृतिक संरचना में पारस्परिक वैयक्तिक सूचक एवं विस्तार शिक्षा द्वारा परिवर्तन लाने की अति आवश्यकता है। पिछले कुछ वर्षों में सूचना प्रसार को रणनीति को सुधारा गया है एवं माता एवं बच्चे के स्वास्थ्य संबंधी पक्षों पर अधिक बल दिया गया है। लोगों को बतलाया गया है कि नियोजित जन्म माता एवं बच्चे दोनों के स्वास्थ्य के लिए प्रथम आवश्यकता है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संदेशों को समेकित किया गया है। अधिक से अधिक संस्थाएं सरकारी एवं गैर सरकारी लोगों को प्रेरित करने के कार्य में संलग्न हैं। जल्दी विवाह के परिणामों से सचेत करने, पुरुष बच्चे के जन्म को प्राथमिकता देने की वृत्ति को दूर करने तथा सुरक्षित मातृत्व एवं पुरुष के दायित्व को समझने के बारे में बहुप्रचार अभियान प्रगति में है। महिलाओं के प्रति सामाजिक द्वेष हो जाता है। स्त्री भ्रूण को समाप्त करा देने की प्रवृत्ति से अस्पष्ट है। भ्रूण में जन्मजात दोषों का पता लगाने के लिए अमीनो सेनेटेसिस एवं अन्य सामान्य परीक्षणों का स्त्री भ्रूण का पता लगाने तथा कुछ एक स्थितियों में इसका गर्भपात कराने के लिए प्रयोग किया जा रहा है। भारतीय सरकार ने इस निंदनीय कार्य को एवं पूर्व जन्म सरकारी जानकारी प्रविधियों का दुष्प्रयोग रोकने के लिए एक अधिनियम का मसौदा तैयार किया गया है। इस प्रस्तावित कानून द्वारा इन विधियों के प्रयोग को नियमित किया जाएगा, जो चिकित्सीय एवं अनुसंधान कार्यों के लिए ही उपलब्ध होंगी। किसी प्रकार के उल्लंघन को दंडनीय अपराध बनाया जाएगा। खाद्य पदार्थों में मिलावट, फूड अल्टरेशन। खाद्य मिलावट रोकथाम कानून 1954 1 जून 1955 से क्रियान्वित है, जिसका उद्देश्य इस बात को सुनिश्चित करना है कि उपभोक्ताओं को एवं स्वास्थ्यवर्धक खाद्य वस्तुएं प्राप्त हों। इसका लक्ष्य धोखाधड़ी को रोकना एवं न्याययुक्त व्यापार व्यवहारों को प्रोत्साहित करना भी है। इस कानून के दोषों को दूर करने एवं दंड को अधिक कठोर बनाने के उद्देश्य से कानून में 1964 तथा 1976 में संशोधन किए गए। कानून के अंतर्गत 10,000 रुपये न्यूनतम जुर्माने तथा 6 मास की कम से कम कैद का प्रावधान है, परंतु यदि खाद्य मिलावट से हानि, मृत्यु अथवा गंभीर स्वास्थ्य हानि की सीमा तक जाए तो दंड आजीवन कारावास तथा 50,000 रुपये के न्यूनतम जुर्माने तक हो सकता है। खाद्य मिलावट कानून एवं तत्संबंधी अनुबंधों के क्रियान्वयन का दायित्व राज्य सरकारों एवं संघ प्रदेशीय प्रशासनों का है। केंद्रीय सरकार इस संबंध में व्यापक नीतियों की रचना करती है, कानून एवं नियमों में आवश्यक संशोधन करती है तथा राज्य सरकारों एवं संघीय क्षेत्र प्रशासनों को इस कार्यक्रम के सफल संचालन के लिए परामर्श देती है। इस कार्य के लिए केंद्रीय खाद्य मानक समिति एक विधिक संकाय की स्थापना की जाती है। इस समिति की सहायतार्थ अनेक टेक्निकल उपसमितियां हैं। कानून अधिकांशतया स्थानीय निकायों द्वारा क्रियान्वित किया जाता है। राज्यों को योग्य एवं अनुभवी स्टाफ सहित खाद्य सेल अलग से स्थापित करने का परामर्श दिया गया है। देश में 4 केंद्रीय खाद्य प्रयोगशालाएं हैं जो मैसूर, गाजियाबाद, पुणे एवं कलकत्ता में स्थापित है। न्यायालय द्वारा नमूनों को इन अपील प्रयोगशालाओं के पास भेजा जाता है। प्रयोगशाला द्वारा प्रदत्ता रिपोर्ट को अंतिम प्रमाण माना जाता है। राज्य स्थानीय निकायों के अधीन 73 खाद्य प्रयोगशालाएं कार्यरत हैं। खाद्य निरीक्षकों द्वारा लिए गए नमूनों को इन प्रयोगशालाओं के पास भेजा जाता है। इन प्रयोगशालाओं के पास प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर न्यायालय में अभियोग चलाया जाता है। खाद्य मिलावट की रोकथाम में प्रशिक्षण एक महत्वपूर्ण अवयव है। महानिदेशक स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम में संलग्न विभिन्न कार्यक्रमों को सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम देश में विभिन्न संस्थाओं के सहयोग से आयोजित करता है। पृष्ठ संख्या 224 पोषण कार्यक्रम न्यूट्रिशंस प्रोग्राम्स। प्रमुख पोषण संबंधी समस्याएं हैं प्रोटीन एनर्जी कुपोषण, विटामिन ए अल्पता एवं रक्त क्षीणता। 17 राज्यों एवं 2 संघ प्रदेशों के स्वास्थ्य निदेशालयों में राज्य पोषण प्रमाणों की स्थापना की गई है, जिसका कार्य है जनसंख्या के विभिन्न वर्गों में खुराक एवं पोषण स्थिति का परीक्षण करना, पोषण शिक्षा अभियान चलाना, पूरक खुराक प्रोग्रामों एवं अन्य पोषण संबंधी उपायों का निरीक्षण करना, राज्य प्रोग्राम प्रमाणों एवं राष्ट्रीय पोषण प्रबोधन ब्यूरो के द्वारा भारतीय चिकित्सीय अनुसंधान परिषद के अधीन किए गए सर्वे से ज्ञात हुआ है कि जनसंख्या के बड़े भाग में प्रोटीन, कैलोरी, कुपोषण एवं अल्पता रोग व्याप्त हैं। सबसे प्रभावित वर्ग बच्चों, गर्भवती एवं दूध पिलाने वाली माताओं का है। समस्या के समाधान हेतु सरकार विभिन्न पोषण प्रोग्रामों को चला रही है। समेकित बाल विकास सेवा योजना के अंतर्गत अनेक सेवाएं प्रदान की जाती हैं, जिनमें सम्मिलित है पोषक आहार, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच एवं अनौपचारिक शिक्षा। 6 योजना के अंत के तक 1000 ब्लॉकों से अधिक समेकित बाल विकास सेवा कार्यक्रम के अधीन थे तथा 7वीं योजना के दौरान 1000 अभय ब्लॉकों में इस कार्यक्रम को आरंभ किया जाता था। विशेष पोषण प्रोग्राम के अंतर्गत पूरक आहार दिया जाता है, धीरे धीरे समेकित बाल विकास सेवा में मिलाया जा रहा है। माध्यान्ह भोजन प्रोग्राम प्राथमिक स्कूलों के बच्चों के लिए है। विटामिन ए के अभाव के अत्यता के कारण बच्चों में दृष्टिहीनता को रोकने के लिए प्रत्येक 6 मास बाद विटामिन ए की खुराक दी जाती है। इसी प्रकार बच्चों एवं महिलाओं में रक्त क्षीणता को रोकने के लिए आयरन एवं फोलिक एसिड की मिली जुली गोलियाँ स्वास्थ्य केंद्रों के माध्यम से विभाजित की जाती है। उत्तम पोषण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकार ने माता को दूध पिलाने वाले राष्ट्रीय संहिता को अपनाया, जिसके अंतर्गत व्यापारिक शिशु भोजन के विज्ञापन पर पाबंदी लगाई गई है। राष्ट्रीय पोषण संस्थान हैदराबाद एवं अखिल भारतीय जन स्वास्थ्य विज्ञान संस्थान कलकत्ता पोषण शोध एवं शोषण कार्मिकों के प्रशिक्षण की भारत में प्रमुख संगठन हैं। पृष्ठ संख्या 225 औषधि नियंत्रण ड्रग्स कंट्रोल। औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन कानून 1940 इसे समय समय पर संशोधित किया गया है। देश में औषधियों एवं सौंदर्य प्रसाधनों के निर्माण, विक्रय एवं वितरण को नियमित करता है तथा अधमानक मिलावटी, हानिकारक एवं गलत नामांकित औषधियों के आयात, निर्माण एवं विक्रय की मनाही करता है। सरकार को आयातित औषधियों का गुणवत्ता को जांचने, राज्य की गतिविधियों को समन्वित करने, नियामक उपाय एवं औषध मानकों को निश्चित करने तथा नई औषधियों की आयात करने अथवा निर्माण करने के बारे में स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार है। देश में जिन औषधियों का निर्माण होता है, विक्रय होता है अथवा वितरण किया जाता है, उनकी गुणवत्ता पर नियंत्रण राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। बम्बई, कलकत्ता, गाजियाबाद एवं मद्रास में स्थापित केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन औषध एवं सौंदर्य प्रसाधन कानून 1940 के उपबंधों के प्रवर्तन के बारे में राज्य सरकारों के साथ निकट संपर्क बनाए रखते हैं। यह संगठन औषध मानक नियंत्रण से संबंधित कार्मिकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का प्रबंध करता है। केंद्रीय औषध प्रयोगशाला कलकत्ता आयातित औषधियों एवं देश में निर्मित औषधियों की गुणवत्ता नियंत्रण हेतु केंद्र से एवं राज्य औषध नियंत्रण प्राधिकारियों की ओर से परीक्षण प्रयोगशालाओं के रूप में कार्य करती है तथा यह न्यायालयों द्वारा प्रेषित औषधियों के नमूनों की जांच के लिए अपीलीय प्रयोगशाला है। केंद्रीय भारतीय औषध विज्ञान प्रयोगशाला गाजियाबाद भारतीय औषध शास्त्र में सम्मिलित गैर जैविकी औषधियों के नमूनों का परीक्षण करता है। चिकित्सीय शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण मेडिकल एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। मेडिकल शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संपूर्ण स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली का महत्वपूर्ण क्षेत्र है। अतएव मेडिकल शिक्षा की गुणवत्ता नवीन रोग परीक्षण एवं निदान संबंधी विधियों का पता लगाने के बारे में समर्पित अनुसंधान एवं लोगों के जीवन को उन्नत करने के लिए समुचित कौशल वाले मेडिकल पैरामेडिकल कार्मिकों को प्रशिक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता दिए जाने की आवश्यकता है। केंद्रीय सरकार इन दायित्वों की पूर्ति मेडिकल शिक्षा के मानकों के प्रबोधन हेतु नियामक निकायों एवं राज्यों के प्रयासों के पूरक रूप में विभिन्न क्षेत्रों में आवश्यक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना द्वारा करती है। भारतीय चिकित्सीय परिषद, भारतीय दंत विज्ञान परिषद, भारतीय नर्सिंग परिषद एवं भारतीय फार्मेसी परिषद जो विधिक निकाय हैं अपने अपने क्षेत्रों में व्यावसायिक मानकों को नियमित करते हैं तथा संबंधित शिक्षण संस्थानों में प्रवेशों को कंट्रोल करते हैं। राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान अकेडमी आयुर्विज्ञानों के विकास को उन्नत करने तथा मेरिट को प्रोत्साहित करने एवं मान्यता देने के उद्देश्य से 1961 में स्थापित की गई। 1956 में स्थापित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली एवं चंडीगढ़ में 1962 में स्थापित स्नातकोत्तर चिकित्सीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान PGI राष्ट्रीय महत्व की संस्थाएं हैं। इसी प्रकार जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन एंड रिसर्च पांडिचेरी, वल्लभ भाई पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट दिल्ली, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज एवं संबद्ध अस्पताल नई दिल्ली, महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सेवाग्राम वर्धा अपने अपने विषयों में शिक्षा एवं प्रशिक्षण देने के कार्य में संलग्न है। राजकुमारी अमृत कौर कॉलेज ऑफ नर्सिंग नई दिल्ली नर्सिंग शिक्षा में अनुकरणीय कार्यक्रमों के विकास में कार्यरत हैं तथा ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र नफसगढ़ ग्रामीण स्वास्थ्य में कार्य कर रहे विभिन्न श्रेणियों के कार्मिकों को प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान करता है। भारतीय चिकित्सीय अनुसंधान परिषद ICMR देश में चिकित्सीय अनुसंधान का उपकरण, विकास एवं समन्वय करता है। इसका संपूर्ण व्यय सरकार द्वारा वहन किया जाता है। परिषद अनेक अर्ध अस्थायी यूनिटों के अतिरिक्त 18 अनुसंधान संस्थानों को चलाता है। ये हैं राष्ट्रीय पोषण संस्थान हैदराबाद, राष्ट्रीय वायरस विज्ञान संस्थान पुणा, तपेदिक अनुसंधान केंद्र मद्रास, राष्ट्रीय व्यावसायिक स्वास्थ्य संस्थान अहमदाबाद, पुनर्जनन अनुसंधान संस्थान बम्बई, केंद्रीय कोढ़ जालमा संस्थान आगरा, रक्त विज्ञान संस्थान मुंबई, वेक्टर नियंत्रण अनुसंधान केंद्र पौडिचेरी, मलेरिया अनुसंधान केंद्र दिल्ली, केंद्रीय आंकड़ा अनुसंधान नई दिल्ली, चिकित्सीय आंकड़ा अनुसंधान संस्थान मद्रास, प्रयोगशाला पशु सूचना सेवा हैदराबाद, खाद्य एवं औषध विश्वविज्ञान केंद्र हैदराबाद, कोशिका विज्ञान अनुसंधान केंद्र नई दिल्ली, कीट वायरस अनुसंधान केंद्र मुंबई, राजेंद्र स्मारक आयुर्विज्ञान संस्थान पटना। इसके अतिरिक्त प्रादेशिक मेडिकल अनुसंधान केंद्रों की भी स्थापना की गई है। पोर्ट ब्लेयर, भुवनेश्वर, डिब्रूगढ़ एवं जबलपुर प्रत्येक में एक है। आयुर्विज्ञान की विभिन्न शाखाओं में शोध कार्य करने के लिए दो विधिक संस्थाएं हैं, एम्स नई दिल्ली तथा पीजीआई चंडीगढ़ हैं। मैसूर में स्थित अखिल भारतीय श्रवण एवं वाणी संस्थान भी है। इन संस्थानों में रोग निदान की सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। विभिन्न विशेषीकृत क्षेत्रों में कार्यरत संस्थान भारतीय कैंसर अनुसंधान केंद्र बम्बई, कैंसर संस्थान मद्रास, चितरंजन कैंसर रिसर्च सेंटर कलकत्ता, रोटरी कैंसर अस्पताल जो एम्स में स्थापित है, राष्ट्रीय तपेदिक संस्थान बंगलौर, वल्लभ भाई पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट दिल्ली, केंद्रीय कोढ़ शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान चिंगलीपुट जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन ने प्रादेशिक रूप से मान्यता दी है, राष्ट्रीय संक्रामक रोग संस्थान दिल्ली, अखिल भारतीय स्वास्थ्य विज्ञान एवं जन स्वास्थ्य संस्थान कलकत्ता, स्वास्थ्य यूनिट एवं प्रशिक्षण केंद्र सिंगूर, नगरीय केंद्र चेतला एवं केंद्रीय औषध प्रयोगशाला कलकत्ता, केंद्रीय अनुसंधान संस्थान कसौली, रोग उन्मुक्ति औषधियों जैसे DPDT, एंटी टाइफाइड, एंटी रेबीज, एलो फीवर वैक्सीन तथा हैजा के टीके एवं एटीसेरा एवं उपाचारीय रेजेंट। एटीजेन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उत्पादक है। यह विश्व स्वास्थ्य संघ अन्य अंतर्राष्ट्रीय अभिकरणों एवं देश में वैक्सीन बनाने वाले संगठनों द्वारा प्रायोजित प्रत्याशियों को विभिन्न टीका द्रव्यों के उत्पादन की तकनीकों एवं उनकी गुणवत्ता नियंत्रण में प्रशिक्षण प्रदान करता है। यह कुत्ते काटने के उपचार, रोकथाम एवं निदान के बारे में अल्पकालीन कोर्सों का भी संचालन करता है। पृष्ठ संख्या 227। स्वास्थ्य शिक्षा, हेल्थ एजुकेशन। केंद्रीय स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो महानिदेशक स्वास्थ्य सेवा में निदेशालय में स्थापित एक शिखर संगठन है। इसकी स्थापना 1956 में विभिन्न अनुभागों के माध्यम से स्वास्थ्य शिक्षा को उन्नत एवं समन्वित करने के उद्देश्य से की गई है, जिसमें सम्मिलित है मंत्रालय की योजना एवं कार्यक्रमों का प्रचार करना, स्वास्थ्य शिक्षा में आधारिक स्वास्थ्य एवं सामुदायिक कल्याण कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण करना, दूसरे राज्यों एवं अन्य एजेंसियों द्वारा स्वीकार किए जाने हेतु स्वास्थ्य शिक्षा संबंधी का वितरण करना, स्वास्थ्य अभ्यासों के संबंध में सामाजिक व्यवहार में हुए परिवर्तनों के बारे में अनुसंधान करना, प्रशिक्षण के प्रभावी निधियों को विकसित करना, स्वास्थ्य शिक्षा के क्षेत्र में सरकारी एवं गैर सरकारी एजेंसियों को तकनीकी सहायता प्रदान करना, स्कूली बच्चों के विभिन्न आयु वर्गों के लिए स्वास्थ्य शिक्षा पाठ्यक्रम तथा शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कोर्सों का विकास करना एवं स्वास्थ्य शिक्षा गतिविधियों को उन्नत बनाने हेतु अंतर्राष्ट्रीय अभिकरणों के साथ सहयोग एवं सहभागीदारी करना। ब्यूरो राज्यों एवं संघ प्रदेशों में स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो के विकास से भी संबंधित है। अब तक 23 राज्यों एवं 8 संघ प्रदेशों ने स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो को स्थापित किया है। 113 जिला स्वास्थ्य शिक्षा यूनिटों की भी स्थापना की गई है। ब्यूरो सभी स्वास्थ्य शिक्षा यूनिटों से तालमेल बनाए रखता है तथा इन्हें तकनीकी परामर्श दे रहा है। ब्यूरो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की योजनाओं एवं इसके कार्यक्रमों को प्रचारित करने का कार्य अपने आरंभ से ही कर रहा है। यह 4 पत्रिकाओं अर्थात स्वास्थ्य हिंद अंग्रेजी, आरोग्य संदेश हिंदी मासिक, महानिदेशालय स्वास्थ्य सेवा विवरणिका अंग्रेजी त्रैमासिक एवं स्वास्थ्य शिक्षा समाचार हिंदी त्रैमासिक को प्रकाशित करता है। यह विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोग्रामों के विचार हेतु प्रचार सामग्री तथा इसके अतिरिक्त विभिन्न राज्यों में उनकी आवश्यकताओं के अनुसार प्रादेशिक भाषाओं में आदर्श स्वास्थ्य शिक्षा सामग्री को भी प्रकाशित करता है। यह विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोग्रामों को संचार एवं जनसंचार समर्थन भी प्रदान करता है। यह स्वास्थ्य शिक्षा प्रोग्रामों को रेडियो तथा दूरदर्शन द्वारा प्रसारित करने हेतु उनसे संपर्क बनाए रखता है। यह स्वास्थ्य के बारे में प्रदर्शनियों का आयोजन करता है एवं लघु फिल्मों, रेडियो तथा टीवी के लिए स्पॉट्स के निर्माण में सहायता प्रदान करता है। ब्यूरो का अनुसंधान एवं मूल्यांकन प्रभाग स्वास्थ्य अभ्यासों को अंगीकृत किए जाने के बारे में समाज के व्यवहार परिवर्तनों से संबंधित अनुसंधान करने में संलग्न है। ब्यूरो का स्वास्थ्य स्कूल शिक्षा प्रभाग अप्रैल 1977 से केंद्रीय प्रायोजित राष्ट्रीय स्कूल स्वास्थ्य शिक्षा परियोजना का प्रबोधन कर रहा है। इस परियोजना का उद्देश्य प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में प्रादेशिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को स्कूली स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है। यह राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद NCERT के साथ मिलकर स्कूली एवं शिक्षकों के प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों एवं पाठ्यपुस्तकों में स्वास्थ्य शिक्षा को समेकित करने के लिए भी कार्य कर रहा है। पृष्ठ संख्या 228, केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य परियोजना, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। केंद्रीय स्वास्थ्य परियोजना, जिसका आरंभ जुलाई 1954 में दिल्ली में स्थित केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों एवं उनके परिवारों को चिकित्सीय सुविधाएं प्रदान करने हेतु किया गया था, अब धीरे धीरे अन्य नगरों यथा इलाहाबाद, बंबई, कलकत्ता, मद्रास, बंगलौर, हैदराबाद, कानपुर, मेरठ, पटना, नागपुर, पूना, जयपुर, अहमदाबाद एवं लखनऊ में भी लागू कर दी गई है। इस परियोजना का लाभ केंद्रीय सरकार के मंत्रियों एवं उनके परिवारों, सेवानिवृत्त केंद्रीय सरकार कर्मचारियों एवं केंद्रीय सरकार के पेंशनरों की विधवाओं, अखिल भारतीय सेवाओं के सेवानिवृत्त कर्मचारियों एवं उनके परिवारों, भूतपूर्व उपराष्ट्रपतियों एवं गवर्नरों तथा उनके परिवारों, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों एवं उनके परिवारों, कुछ एक चयित अर्ध सरकारी एवं स्वायत्त संस्थाओं केवल दिल्ली में के कर्मचारियों, राष्ट्रीय संयुक्त परामर्श संयम JCM का स्टाफ एवं उनके परिवारों, सामान्य जनता केवल दिल्ली में तथा प्रत्यायित पत्रकारों को भी प्राप्त है। यह परियोजना 1954 में 16 एलोपैथिक औषधालयों के साथ आरंभ की गई थी, जिसके अंतर्गत लगभग 2.3 लाख भोक्ता आते थे। अब इस योजना के अंतर्गत रोग निदान की विभिन्न प्रणालियों यथा आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध होम्योपैथिक एवं एलोपैथी के 281 औषधालय हैं, अस्पताल हैं जो लगभग 30.15 लाख लाभ उपभोक्ताओं को सेवा प्रदान कर रहे हैं। बम्बई, मद्रास, कलकत्ता आदि में 162 सरकारी निजी अस्पतालों को इस परियोजना के अधीन मान्यता प्रदान की गई है, जहां लाभ भोक्ता विशेषीकृत इलाज एवं अस्पतालीय सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं। अपोलो हॉस्पिटल मद्रास कारोनेरी बाईन्यास सर्जरी के लिए मान्यता प्राप्त अस्पतालों की सूची में है, जिसके लिए देश में अभी बहुत कम सुविधाएं हैं। नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट एंड बत्रा अस्पताल दोनों को ही कारनेरी बाईपास सर्जरी के लिए रेफरल अस्पतालों की सूची में सम्मिलित कर दिया गया है। इन अस्पतालों में विशेषीकृत इलाज हेतु प्रवेश निदेशक केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा की पूर्ण अनुमति से ही लिया जा सकता है। भारतीय चिकित्सा प्रणाली, इंडियन सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन। भारतीय चिकित्सा प्रणाली में आयुर्वेद, सिद्धा, यूनानी, अमाची, तिब्बती प्रणाली एवं प्राकृतिक इलाज संबंधी प्रणाली है। भारतीय चिकित्सा प्रणाली में लगभग 2.91 लाख पंजीकृत डॉक्टर अधिकांशतया ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं। 13,137 औषधालय एवं 1,676 अस्पताल वार्ड, जिनमें 18,500 से अधिक बिस्तर हैं, भारतीय चिकित्सा की विभिन्न प्रणालियों के अंतर्गत कार्यरत हैं। 97 आयुर्वेदिक महाविद्यालय, 80 यूनानी कॉलेज एवं 1 सिद्धा कॉलेज देश में सरकारी एवं गैर सरकारी दोनों क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं। आयुर्वेद में 3,872, यूनानी में 686 एवं सिद्धा में 100 विद्यार्थियों के लिए स्नातक पूर्व शिक्षा में वार्षिक प्रवेश हेतु प्रबंध है। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर एवं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय तथा गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय में आयुर्वेद में पूर्ण रूपेण स्नातकोत्तर संस्थानों के अतिरिक्त आयुर्वेद में स्नातकोत्तर शिक्षा प्रदान करने के लिए 20 महाविद्यालय हैं। इसके अतिरिक्त महाराष्ट्र में 4 गैर सरकारी महाविद्यालय जो यूनानी एवं 1 सिद्धा में हैं। सरकार ने कुछ समय पूर्व कर्नाटक सरकार की सहभागीदारी एवं बंगलौर में राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान की स्वीकृति प्रदान की है। पृष्ठ संख्या 229। केंद्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद नई दिल्ली आयुर्वेद, यूनानी एवं सिद्धा द्वारा चिकित्सा एवं इनकी शिक्षा को नियमित करती है। केंद्रीय होम्योपैथिक परिषद इसी प्रकार होम्योपैथी शिक्षण एवं प्रशिक्षण चिकित्सा प्रैक्टिस को नियमित करती है। देश में 127 अस्पताल वार्ड, जिनमें 3,388 बिस्तर हैं एवं 2,183 औषधालय तथा 1.24 लाख होम्योपैथी के चिकित्सक हैं। गैर राजकीय क्षेत्र में 2 महाविद्यालय प्राकृतिक इलाज चिकित्सा में प्रशिक्षण देने के लिए, जिनमें प्रत्येक वर्ष 50 विद्यार्थी प्रवेश पाते हैं। चिकित्सा एक महाविद्यालय विश्वविद्यालय से संबंध है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान की पूना में स्थापना की गई है, जो स्वायत्त संगठन है।